समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar Neha, Adab and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very, very fresh episode of Parikrama. और पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही बुरी हालत हो रही है इस वक्त, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है एंड ऑफ कोर्स एवरी वन इज़ प्रॉब्ली यू नो डिस्टर्ब्ड बाय द सो मच ऑफ रेनफॉल। नन द लेस डेनिजन्स ऑफ दिल्ली को भी कल से बहुत ज़्यादा बारिश हम लोग देख रहे हैं।
बिल्कुल,
बट येस आई थिंक इट्स हाई टाइम नेहा दैट वी ऑल रियलाइज दैट वी हैव टू It's still not very late. It is late, but not very late. We can still do some amends and preserve nature. क्योंकि अगर हम लोग पेड़ काटते रहेंगे, indiscriminate felling of trees होगी, तो जाहिर है the trees hold together the mud. तो इसी वजह से हर तरफ landslides आ रहे हैं. But anyway, we hope that definitely something the government is doing so much. So hopefully. Things would be better.
बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ जाएगी।
Absolutely. And yes, Neha has already told you what to look forward to in today's show. We have, of course, our Dateline India segment, जिससे शुरुआत करते हैं और नाम है शो का परिक्रमा। तो जाहिर सी बात है, देश की परिक्रमा पे तो निकलना लाजमी है। Yes, we'll go to different parts of the country where our correspondents are there with very interesting news. Because Neha, we all see that in the main news bulletins, बहुत सारी ऐसी interesting stories होती that they don't become a part of those bulletins, the hard news so-called bulletin. But these soft stories, they are very enriching and that's why we bring them to you in Parikrama. All of that in the next half an hour. Let's first start with the headlines, Neha.
बिल्कुल, वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन की बैठक में कर दरों को युक्तिसंगत बनाने और अगली पीढ़ी के सुधारों पर विचार विमर्श होगा।
Prime Minister Narendra Modi interacts with experts in semiconductor sector on second day of SemiCon India 2025 in New Delhi.
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की दिल्ली में जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वाडेफुल के साथ बातचीत। यूरोपीय संघ के साथ व्यापार वार्ता में तेजी लाने के लिए जर्मनी से सहयोग मांगा।
IMD issues red alert for heavy rainfall in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Haryana and Punjab.
अमरीकी ओपन टेनिस में भारत के युकी भामरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
एंड इन हॉकी, इंडिया टू टेक ऑन साउथ कोरिया इन फर्स्ट गेम ऑफ सुपर फोर स्टेज ऑफ मेंस एशिया कप टूर्नामेंट एट राजगीर इन बिहार एट 7:30 PM। And yes, as I had mentioned initially, Neha, that we open our show with our very special segment, Dateline India, and we discuss some important topics. और जाहिर सी बात है, इस वक्त सबसे ज्यादा important topic जो हमारे मुल्क को affect कर रहा है, that is of course the havoc that we are seeing all around due to heavy rains, and unrelenting rains have piled misery, especially in northern India, that is reeling under serial cloudbursts and floods for the past few weeks, as swollen rivers inundated plains, crippled rails and road traffic, and forced school closures. There is no respite in sight under the threat of more rain that can trigger yet another series of disasters. Pilgrimages to many Himalayan tribes have been suspended and people have been asked to maintain extreme caution. No doubt, Neha, as we had mentioned, that of course heavy rains are a major concern. But I think what I mentioned initially, that because insan ki itni greed hum log ki ho gayi hai, that we are acquiring more and more land to build houses, to kuch jaghaen aisi kehte hai na honi chahiye, jahan so-called development jise kehte hai, where development ka matlab ye nahi hota, we raise structures. स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्क्रीट एंड वाटर. तो आप वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट जो कहते हैं ना कमर्शलाइजेशन, अगर आप बहुत सी ऐसी सेंसिटिव जोन्स में करेंगे तो प्रॉब्ली अनफॉर्चुनेटली जरा सी भी बारिश या एक बादल फटेगा तो ये होगा, विच शुड नॉट बी देयर. एंड आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बिट, एंड नाउ इट्स अ बिग बिग वेकअप कॉल दैट वी आर सीइंग ऑन टेलीविजन स्क्रीन्स फ्लैशिंग बिफोर अस.
जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अगर बात करें तो गुरुग्राम में जल भराव की समस्या से यातायात ठप हो गया है. शहर की कई सड़कें और अंडरपास जलमग्न हो गए हैं, जबकि शहर के सेक्टर 63A इलाके में कादरपुर गांव के पास अरावली बांध के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से गांव जलमग्न हो गए हैं. वहीं यमुना नदी आज सुबह खतरे के निशान को पार कर गई. पिछले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में लगातार मध्यम से भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ रहा है. जलस्तर 206.8 मीटर तक पहुंच गया है. एहतियात के तौर पर आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. पुराने रेलवे पुल को परिचालन के लिए बंद कर दिया गया है. इस मामले को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज सुबह आईटीओ बैराज का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. पत्रकारों से बात करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्थिति नियंत्रण में है. यमुना नदी के किनारे एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं. मीडिया से बात करते हुए एनडीआरएफ के कमांडेंट ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है. उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की 14 से 18 टीमें तैयार हैं.
That's right. And if we talk of Punjab, well, the situation in Punjab, battling its worst flood since 1988, remained precarious as the Satluj, Bias and Ravi rivers and seasonal rivulets remained swollen due to heavy rains in the upstream. 12 districts have been hit by the floods that have already claimed 30 lives, besides impacting more than 3.5 lakh people. All 23 districts of the state have been declared as hit by floods. A total of 1,400 villages have been declared as affected, impacting 3,54,626 people so far. Pathankot has reported the highest death toll of 6. And monsoon rains, of course, they continue to lash in Himachal Pradesh, affecting normal life. The Met Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall at some places in Kangra, Chamba, Mandi and Kullu districts today. According to Met Department, the state has so far received 42% more rainfall than normal during this monsoon season. Incidents of landslides are being reported from various places due to continuous rainfall in the state. And of course, in Mandi district, debris suddenly came down from a hill last evening, burying 2 houses in which 5 people lost their lives. So, Neha, agar dekhe, to is waqt barish ki wajah se har taraf tabahi ka hi manzar dikh raha hai.
बिल्कुल, जैसा कि आपने हिमाचल प्रदेश और पंजाब का जिक्र किया, वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू के विभिन्न हिस्सों में कल देर रात से हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है और जलभराव ने यातायात जाम और दैनिक यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है. चिनाब, तवी, रावी और उज सहित जम्मू क्षेत्र की सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. मौसम विभाग ने जम्मू क्षेत्र के कई जिलों में आज दोपहर तक भारी बारिश का अनुमान जताया है. लगातार भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी बाधित हुआ है. स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने ताजा मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों, खासकर जम्मू संभाग और दक्षिण कश्मीर के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है, जिससे अचानक बाढ़, भूस्खलन और संवेदनशील इलाकों में पत्थर गिरने की आशंका है. झेलम, तवी और अन्य स्थानीय नदियों और सहायक नदियों के जलस्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव हो सकता है. अधिकारियों ने निवासियों से जल निकायों, नदी तटबंधों और ढीली संरचनाओं से दूर रहने का आग्रह किया है, जबकि पहाड़ी रास्तों पर यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
That's right, Neha. And in fact, you know, एक बहुत ही अच्छा सा इंटरव्यू मेरे जहन में आ रहा है एक एनवायरमेंटलिस्ट का. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट एनवायरमेंटलिस्ट. शी सेड अ वेरी वेरी यू कैन से थॉट प्रोवोकिंग थिंग. हम लोग अक्सर जो है कहते हैं ना कंजर्व नेचर, प्रिजर्व नेचर. शी सेड दैट प्लीज यू डोंट हैव द पावर टू प्रिजर्व एंड कंजर्व नेचर. You know, nature is so powerful that it will reclaim eventually. What you need to do is you need to protect yourself. यू नो, तो दैट मीन्स इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज मत कीजिए. हर जगह कॉन्क्रीट जंगल
अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए,
आप उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़िए, क्योंकि हर जगह आप अगर कॉन्क्रीट जंगल क्रिएट करेंगे सो दैट इज नॉट, इट इज सपोज टू बी लाइक राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फिक्र करें, आप अपने आप को देखें, क्योंकि इवेंचुअली आप देखिए क्या नेचर का नुकसान हो रहा है इसमें. नहीं, लोग मर रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं. सो दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड दैट सिचुएशन एंड नाउ नेचर इज रिक्लेमिंग दैट. नेचर इज गिविंग us signals that please wake up, you are probably digging your own grave. But I think insaan ki hasti hai ke jab bahut kuch insaan ka chhoot jata hai tabhi shayad uski akhla aati hai, aur dukhad baat ye hai ke kai baar tab bhi nahi aati hai. But I hope that all the listeners who are listening to us, jitna ho sake apne aas paas hi sahi, do plant trees and don't, if you see any illegal construction going on, report it to the authorities. So it's very important ki insaan, kyunki kehte hain na neha, I hope I'm not sounding very philosophical, but कफन में जेब नहीं होती. तो अगर आप बिल्डर्स को अगर आप देख लें जो इनडिस्क्रिमिनेट इतनी लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हर जगह बना रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, राइट, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई दे हैव गॉट इनफ फॉर एटलीस्ट 2-3 जनरेशंस नाउ, सो नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप. बिकॉज इवेंचुअली जैसे नेचर अभी रिक्लेम कर रहा है, भगवान ना करे पूरी अर्थ इसी तरह ना, जिसको कहते हैं ना द प्रलय आएगी, सो मे बी इट्स अ ट्रेलर ऑफ दैट प्रलय.
जी बिल्कुल, ये वेकअप कॉल की तरह है हमारे लिए.
यस एब्सोल्युटली. एंड इफ यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वेल नॉर्मल लाइफ इन ओडिशा वॉज ऑल्सो थ्रोन आउट ऑफ गियर एज हैवी शावर्स कंटिन्यूड सिंस मंडे नाइट, while the formation of a fresh low pressure area over the Bay of Bengal has activated rainfall activities. The weather agency said the state will get more rain in the next 4 days, and as sea condition is very likely to be rough on Wednesday, that is today, IMD has cautioned fishermen not to venture into the sea along and off the Orissa coast till 3rd of September. And the Met Department has issued red alert for Jammu Kashmir, jaisa neha aapne bataya. And the red alert is also in place for Leh, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Odisha for today. And heavy to very heavy rainfall is expected in down south also. And of course, in Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, coastal Odisha and Maharashtra as well.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. पहले नागालैंड चलते हैं.
यस, वी आर बिगिनिंग आवर जर्नी, वी आर बिगिनिंग आवर परिक्रमा फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ नागालैंड टुडे. इन अ प्राउड मोमेंट फॉर नागालैंड, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेडिकेशन ऑफ एन एजुकेटर हुज इम्पैक्ट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द क्लासरूम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल टीचर अवार्ड 2025. Ms. Pellina Petinelio, a teacher with over 2 decades of experience, has been shaping the future of her students with empathy, creativity, and an unwavering sense of purpose. Let's hear more from our Kohima correspondent.
Ms. Pellina Petinelio's journey in education began at Government High School, Sikhazu. Since 2014, she has been working at John Government Higher Secondary School, Visema, where she has been living her vision of education with empathy, leadership with purpose, creating an environment where learning extends beyond the textbooks. One of her standout initiatives, Each One, Teach One, embodies her belief that teaching is not just about knowledge, but about empowering others. In this initiative, Ms. Pellina engages 12 grade students to mentor younger learners, particularly those from disadvantaged backgrounds. This simple yet powerful concept has resulted in a ripple effect where mentoring one student creates a chain of learning, empathy, and leadership. Ms. Pellina is known for her efforts to reduce student dropouts, often making home visits, sponsoring admission fees, and even providing mobile phones to underprivileged learners. As the president of the English Professional Learning Community in Kohima District, she has facilitated online meetings, WhatsApp discussions, and in-person workshops, helping teachers collaborate and build content. She has also been instrumental in developing e-content for the Abhyas LMS and lesson plans for Diksha. Ms. Pellina's philosophy, a teacher, a mentor, a legacy, is evident in her very action. Her unwavering dedication has indeed transformed countless futures, making her a true beacon of hope and inspiration in the world of education. For Parikrama, this is Mary Mayase from Akashvani News Kohima.
Wow, indeed a very inspiring story, Neha. And of course, Ms. Pelino's story is a reminder of the incredible difference that one teacher can make in the lives of so many. Her commitment to not only teaching, but also mentoring, empowering, and uplifting her students is a true testament to the power of education. अब कहाँ चल रहे हैं हम लोग नेहा?
अब हम गुजरात की परिक्रमा पर चलेंगे. गुजरात के किसान प्राकृतिक खेती में एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं. हाल ही में बड़ौदा के एक किसान ने प्राकृतिक खेती में आईओटी तकनीक का इस्तेमाल करके दूसरे किसानों को एक नई दिशा दी है. आईओटी की मदद से वे सालाना 4 से 5 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं. आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट.
तकनीक को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने से बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं. इसका एक उदाहरण गुजरात के बड़ौदा के किसान संजय पटेल के काम से जान सकते हैं. वाघोड़िया तालुका के कोटंबी गांव में रहने वाले इस किसान ने 22 बीघा जमीन पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती को आधुनिक तकनीक खासकर आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जोड़कर एक अनूठा मॉडल तैयार किया है और प्राकृतिक खेती में आधुनिक तकनीक का भी समुचित उपयोग किया है. आईओटी आधारित प्रणाली के माध्यम से खेत में तापमान, हवा की गति, कोहरा और मिट्टी की नमी जैसे मापदंडों की सटीक निगरानी की जाती है. मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वह पानी की आवश्यकता से लेकर हर प्रक्रिया को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं. इस पद्धति से उन्होंने उपज की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हासिल की है. परिणाम स्वरूप आज वे सब्जियां बेचकर हर साल 4 से 5 लाख रुपए की आय प्राप्त कर रहे हैं और अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं. परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अड़ियचा.
And now from Ahmedabad, we head towards the east coast. And उससे पहले हम नेहा आपसे सवाल पूछेंगे. Do you like to travel?
बिल्कुल, मुझे घूमना बहुत पसंद है, खासकर आप जहाँ की बात करने वाली हैं उस तरफ.
That means आपने इशारा दे दिया, आपको पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. Yes, we are heading to Odisha. एंड उड़ीसा का जब जिक्र होता है नेहा तो अक्सर जो है कोणार्क का ही जहन में आता है. बट वी डोंट नो बिकॉज आवर कंट्री इज सो ब्यूटिफुल एंड सो रिच, देयर आर सो मेनी हिडन जेम्स ऑल्सो. आपने कभी उषा कोठी का नाम सुना है उड़ीसा में?
बिल्कुल सुना है.
ओह दैट्स लवली, बट अ लॉट ऑफ लिसनर्स माइट नॉट हैव. आई हैड नॉट यू नो हर्ड दिस नेम. सो उषा कोठी इज अ हिडन जेम इन वेस्टर्न उड़ीसा. इट्स लोकेटेड इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, rich history and cultural values. Although it's not very famous, it is an excellent destination for tourists and history enthusiasts who want to discover something new. Oh, mera mujhse to raha nahi ja raha ye report sunne ke liye. Let's listen more from our correspondent Bismita.
The Usakoti Wildlife Sanctuary, also known as Badarama Sanctuary, was established in 1962. It covers around 285 square kilometers. The sanctuary is home to a diverse array of animals, including tigers, leopards, elephant, and various bird species. Two rivers, the Penganga and the Vardha, also known as Vasishta, flow through it, helping keep the forest alive and green. The area is also rich in history. There are over 600 rock shelters with old carvings and paintings in the Usakoti 1 area and 67 more in Usakoti 2 area. Experts believe these artifacts date back to prehistoric time and reveals how people lived long ago. One of the main attractions is a Usakoti temple dedicated to Lord Shiva and Mata Parvati. Locals believe that the Pandavas from the Mahabharata lived in this forest during their 12-year exile. Usakoti has excellent potential to grow into a popular tourist destination. The government and some NGOs are collaborating to develop the area while preserving the forest. Recently, Union Education Minister Dharmendra Pradhan visited the place with locals official. He promised that the central government would help in its growth by preserving its natural beauty. For Parikrama, this is Bismita Pradhan from Akashvani Sambalpur.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
Well, in US Open tennis, India's Yuki Bhambri and his New Zealand partner Michael Venus have advanced to the men's doubles quarterfinal in New York. The 14-seed pair defeated the 4th-seeded German duo of Kevin Krawitz and Tim Putz 6-4, 6-4 in the pre-quarters. Bhambri and Venus will now face the formidable team of Nikola Mektic of Croatia and Rajiv Ram of the US in the last 8 later tonight.
बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में आज से सुपर फोर के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। भारत के अलावा चीन, मलेशिया और कोरिया ने सुपर फोर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम आज अपना पहला सुपर फोर मैच कोरिया के खिलाफ खेलेगी। यह मैच शाम 7:30 बजे राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शुरू होगा।
And now if we talk of some business news, well, benchmark domestic equity indices rose over 0.5% today. The markets had opened on a flat note and remained largely range-bound during intraday trade. However, both the indices secured remarkable gains during the last hour of trade. Sensex jumped 410 points to close at 80,568. Similarly, Nifty climbed 135 points to settle at 24,715. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 1,06,470 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was trading down at 1,24,290 rupees per kg when reports last came in.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
Eminent freedom fighter and revered Gandhian Kamalapati Tripathi was born on this day in 1905. His father's name was Pandit Narayan Pati Tripathi and his ancestors had settled down in Varanasi during 16th, 17th century. He started his career as a journalist with the Hindi newspaper Aanch and later established the newspaper Sangsar. He was also the editor of the two tabloids. He participated in the non-cooperation movement in the United Province, now Uttar Pradesh, in 1920, the civil disobedience movement in 1930, and the Quit India movement in 1942, for which he was arrested and imprisoned on several occasions. Kamalapati Tripathi was elected to the Constituent Assembly from United Province and played an important part in the drafting of the Constitution of India. He is quite famous for his speech on the amendment of the expression India, that is Bharat. In his words, it would have been more in accordance with the prestige and the traditions of the country and the Constituent Assembly if this amendment was made.
After independence, Kamalapati held various portfolios in the state government. He became the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh in 1969 and later the Chief Minister of Uttar Pradesh in 1971 and remained in chair for 2 years. After that, he served as the Union Minister for Railways 2 times. He carried the distinctive image of a courteous, dignified and principled politician. He was totally committed and devoted to the field of journalism and Hindi. He advocated for including journalism as a course in graduate and postgraduate level. The Department of Journalism and Mass Communication at Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth was established in 1945 by him. He was the chairman of the Hindi Sahitya Sammelan from 1947 to 1948. Kamalapati's notable works reflect his sustained love for Gandhi, including Bapu Aur Bharat, Bapu Aur Manavta, and freedom movements and afterward.
Pandit Kamalapati is an inspiration and a guiding spirit for us all. He had the exceptional ability to connect with the swiftly changing situations of the modern times while keeping his traditional commitments intact. His personality was a balance and blend of religious beliefs and secularism. He was a leader of the masses and believed in treating all people alike, regardless of their caste or religion. He would always be remembered as a true nationalist, a principled leader, and a champion of development and people-oriented politics.
आज पंडित किशन महाराज का जन्मदिन है। पंडित किशन महाराज बनारस घराने के एक विश्व प्रसिद्ध तबला वादक थे। उनकी तबला वादन शैली जिसमें वाम हाथ यानी बायां हाथ के उपयोग पर विशेष जोर था, गंभीर शैली कहलाती है। किशन महाराज को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया था। वहीं उन्हें वर्ष 1984 में केंद्रीय संगीत नाटक पुरस्कार, वर्ष 1986 में उस्ताद इनायत अली खान पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और ताल विलास के अलावा उत्तर प्रदेश रत्न, उत्तर प्रदेश गौरव भोजपुरी रत्न, भागीरथ सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी नवाजा गया।
And before we talk about the next personality, unka pehle ek dialogue sunte hain, to aapko khud pata chal jayega wo kaun hai.
अगर हम लड़कियों पे फूल मारेंगे और फूल के बदले अगर वो हमें मारने की कोशिश करे तो हमें मार खाने से बचा लेना.
ये कोई नई बात थोड़ी है.
हम इस गली पर चंपा कली फेंक कर इसकी दिल की गली में घुस जाएंगे.
अरे बड़े बत्ती भी लगने कुछ अकल आए कि नहीं.
आओ, अकल है तभी तो फूल मारा है, नहीं तो पत्थर नहीं मारता. और कैसा लगा मेरा डायलॉग?
जी हाँ, कैसा लगा ये डायलॉग? एंड आई एम श्योर थ्रू दिस डायलॉग यू हैव ऑलरेडी गेस्ड दैट यस, इट्स शक्ति कपूर्स बर्थडे, द आउ विलन ऑफ इंडियन सिनेमा एंड नोन फॉर हिज इनिशियली विलनस रोल्स एंड लेटर ही टर्न टू कॉमिक रोल्स एज वेल. ही हैज फीचर्ड इन ओवर 700 फिल्म्स. In the 80s and 90s, he teamed up with actor Asrani and Kadir Khan also as the comical or evil team in over 100 films. And उनके बारे में कुछ और बताइए नेहा.
हाँ, अगर शक्ति कपूर की प्रमुख फिल्मों की अगर हम बात करें सायरा, तो इनमें कर्मा, तोहफा, रॉकी, सत्ते पे सत्ता, अंदाज अपना अपना, राजा बाबू, जीते हैं शान से, छोटे सरकार, जुड़वा, दूल्हे राजा, हम, आंखें, बाप नंबरी, बेटा दस नंबरी, कूली नंबर वन शामिल है.
अरे नंदू, इधर इधर इधर. अरे मेरे साथ तस्वीर खिंचवा.
आपके साथ तस्वीर?
हाँ.
आप इतने बड़े साहूकार और मैं इतना छोटा आदमी, आपके साथ तस्वीर कैसे खिंचवा सकता? नीचे देख.
अरे मैं कह रहा हूँ ना, अब बैठ.
आप कह रहे खिंचवा लेता हूँ.
सुन सुन, तुझे मालूम है कि मैंने तेरे साथ तस्वीर
आज भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्मदिन है. इन्होंने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है. भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली वे पहली महिला पहलवान हैं. इससे पहले इन्होंने ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक जीता था. 2014 के विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया.
Today is also the birthday of Vivek Oberoi. Yes, we all know him as, of course, he is Suresh Oberoi's son, but he has carved a niche for himself. In fact, initially in his career, he acted in a very, very good movies like Sathya, Yuva, Road, Lokhandwala, and Omkara, of course. His performance was praised especially in Omkara a lot. But following a decline, he had commercial success in 2013 with sequels of Krish 3. And he has since then expanded to South Indian cinema, playing villainous roles in films like Vivegam, Lucifer, and Kaduva. Let's hear to this beautiful song from the film Sathya. Oh,
आज पुण्यतिथि है शंभुनाथ सिंह की. शंभुनाथ सिंह हिंदी कवि, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था. उनकी प्रमुख कृतियों में समय की शिला पर, जहां दर्द नीला है, हरिजन गीत, देवलोक और आदि शामिल हैं. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और शगुन सॉरी सायरा मुस्तबा को वे परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नेहा को शगुन की याद आ रही है, हो सकता है लिसनर्स उनसे कल परसों मिले। सायरा
इसके लिए हम एक बार फिर माफी चाहते हैं।
सायरा राइट नेहा, सो इजाजत दीजिए। नेहा और सायरा को नमस्कार।